लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपसी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपसी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाएं हम अपने स्वरूप में। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाएं हम अपने स्वरूप में। दुनिया के आकर्षणों में, दुनिया के आकर्षणों में अब हमें ना रहना है, अब हमें ना रहना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपसी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। बाबा की शुभ आशाओं को, बाबा की शुभ आशाओं को अब हमें पूर्ण करना है, अब हमें पूर्ण करना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपसी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही।
शांति। हम सब के बीच में हमारे आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी विराजमान हैं। हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए, एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी मुंबई महानगरी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। बाल्यकाल से ही बाबा का हाथ पकड़ लिया, लौकिक अलौकिक पढ़ाई पढ़ते हुए बड़े हुए। 1969 में ग्रेजुएशन की एग्जाम्स देकर आप मधुबन में आए, ट्रेनिंग ली और बाबा ने आपको विविध स्थानों पर सेवा अर्थ भेजा, जिसमें से पहला स्थान आपका ही राजकोट रहा, फिर बेंगलोर, हैदराबाद, नेपाल, अफ्रीका और मॉरिशस जैसे स्थानों पर आपने सेवाएं की। और 1976 में बाबा ने आपको मधुबन निवासी बनने का सौभाग्य दिया। तो 1976 से आज दिन तक इस मधुबन धरनी में रहकर आप तीनों ही कॉम्प्लेक्स में, देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में आप राजयोग शिविर के डायरेक्टर हैं, एजुकेशन विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं, मधुबन की पांडव भवन की भट्टियों के कोऑर्डिनेटर हैं और पांडव भवन में जब विदेशी सीजन होती है उनके प्रोग्राम्स के भी आप कोऑर्डिनेटर हैं। साथ साथ आप इंटरनेशनल इंटरप्रेटर भी हैं। बहुत सी विशेषताओं से भरपूर और मुख्य विशेषता तो हम कहेंगे जो पालना मम्मा और बाबा से, दादियों से आपने ली है, वो पालना का रिटर्न सबको देना, ये इस समय आपकी वर्तमान में मुख्य विशेषता कहेंगे कि जब दादियां अब नहीं रही, अव्यक्त रही, तो आपसे ही सभी वो दादियों की पालना का भासना प्राप्त करते हैं। तो आज हमारे बीच में हमें भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य बताएंगे कि कैसे हम बेहद का वैराग्य अपने जीवन में लाकर बाप समान बनने का जो हमारा लक्ष्य है उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सुनते हैं दीदी से क्या है बेहद का वैराग्य। आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर्वप्रथम प्यारे बाप दादा, सर्व दादियां, सर्व मधुबन निवासी तथा हमारे तरफ से इस मधुबन तपोभूमि में, वरदान भूमि में, ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अब जोर से ताली बजाएं। बहुत भाग्यशाली हैं आप जो मधुबन में भट्टी करने का चांस मिला। बहुत समय की ये भी तपस्या रही जो यहाँ भट्टी करने का चांस मिला। हम तो कहेंगे कि कईयों का नाम होगा लिस्ट में, लेकिन एन मौके पर कैंसिल हो गया होगा क्योंकि कुछ काम पड़ गया। और कई ऐसे भी होंगे जिनका कोई नाम नहीं भी था, लेकिन क्योंकि कुछ एक का कैंसिल हुआ तो आपको कहा गया होगा आप चलना चाहते हो और आपने सहज स्वीकार कर लिया और आप पहुंच गए। तो हम कहेंगे कि जो पहुंच गए वो बहुत 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 भाग्यशाली। हाँ, पहुंच गए, फिर से अपने लिए ताली। वैसे तो हमारे सभी कॉम्प्लेक्सेस में भट्टियाँ चल रही है, ज्ञान सरोवर में भी भट्टी चल रही है, कल से शांति वन में भी भट्टी शुरू होगी, फिर मनमोहिनी वन में तो शिविर चल रही है, कॉन्फ्रेंस चल रही है, और मानसरोवर में भी भट्टी चल रही है। तो चारों ओर भट्टियों का ही वातावरण है, चाहे मधुबन चाहे भारत में विदेशों में भी यही सब चल रहा है, क्योंकि सभी देख रहे हैं ना कि समय कितना कम है। दिन प्रतिदिन जो आसार दिखाई देते हैं उनसे लगता है कि अभी जल्दी वापस जाना है, जाना है ना वापस घर कि नहीं जाना है? जाना है ना, तो घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। पर घर जाने से के पहले हमें पावन बनना है, संपूर्ण बनना है, फरिश्ता भी बनना है। और उसके लिए लक्ष्य है कि हमको बाप समान बनना है। और उसके लिए क्या पुरुषार्थ है? तपस्या करनी है। तो इसीलिए आपका जो ये तपस्या का प्रोग्राम बना है, योग तपस्या भट्टी संपन्नता की ओर, तो इतना ऊंचा लक्ष्य बाबा ने हमें दिया है। क्योंकि तीन तरीके से हमारा शुद्धिकरण होगा, या तो योग बल से होगा, जिसके लिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। तो ये एक तरीका है योग बल, जिनसे हमारे हिसाब किताब पूरे होंगे। दूसरा फिर है कर्म भोग। उस दिन भी बाबा ने कहा कि कर्म भोग से भी हिसाब किताब चुकतू होते हैं, तो खुशी खुशी कर्म भोग का भी अनुभव करके हल्के रहो, क्योंकि हिसाब किताब चुकतू होते हैं। और तीसरा फिर अगर इससे नहीं हुआ तो फिर कौन सा तरीका है? सजा बल, धर्मराजपुरी की सजाएं। तो धर्मराजपुरी की सजाएं तो नहीं खानी है ना, लेकिन हाँ कर्म भोग से हो जाए, योग बल से हो जाए, और यहाँ ही संपूर्ण बन करके हम वापस बाबा के घर जाएं। इसलिए उसके लिए सर्वप्रथम जो अभी का विषय है, बेहद का वैराग्य। क्योंकि जब तक बेहद का वैराग्य नहीं आएगा तब तक हमारा योग भी नहीं लगेगा। गीता में भी आता है जब भगवान ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन इस मन को मेरे में लगाओ, तो अर्जुन की तो बहुत शिकायतें थी, कैसे लगाएं मन, ये मन तो बहुत चंचल है, मन तो बहुत पापी है, दुष्ट है, घोड़ा है, बेलगाम दौड़ता रहता है, इस मन को हम कैसे वश करें, ये तो बहुत मुश्किल है। तो भगवान ने उसको युक्ति बताई, कैसे मन को वश कर सकते हो, कैसे मेरे मुझे याद कर सकते हो, और क्या दो कदम बताए? पहला बताया वैराग्य, वैराग्य पहला कदम है, और फिर दूसरा कदम बताया अभ्यास। इस वैराग्य और अभ्यास से मन को वश में किया जा सकता है और मेरे में लगाया जा सकता है। तो आज जो भक्ति मार्ग में भी हम देखते हैं कि यही शिकायत है भक्तों की, पूजा करने बैठते हैं, पूजा पाठ जप तप बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मन तो कहाँ कहाँ भटकता है। इसलिए फिर भले माला भी उठाकर फेरते हैं, मुख पर मंत्र भी होता है, चलो सामने कोई मूर्ति भी होती है, तो आंखों को तो काम दे दिया, मूर्ति मूर्ति को देखना, ध्यान करना मूर्ति को, हाथ में मणके फेरते उंगलियों से तो हाथों को भी काम दे दिया, चलो मुख से मंत्र जाप करते हैं तो मुख को भी काम दे दिया, लेकिन मन को तो काम दिया ही नहीं। मन को तो काम चाहिए ना, तो मन तो बेलगाम घोड़ा होके भटकता रहता है। और मिसाल क्या देते हैं, मन भी एक बच्चे की तरह है, अब बहुत चंचल है बच्चा, तो उसको कैसे वश में किया जाता है? उसको बांध के तो नहीं बिठाएंगे ना, उसको छोड़ भी नहीं देंगे, छोड़ देंगे तो माँ की नाक में दम कर देगा, भागता रहता इधर उधर, और उसको एक जगह बांध के भी नहीं बिठा सकते, चिल्लाएगा रोएगा। तो इसीलिए जो समझदार माँ होती है वो बच्चे को कुछ न कुछ काम देती है, ये करो। हाँ, वो मिसाल देते हैं ना कि एक बच्चा था, अब उसको क्या काम दिया, वो एक चित्र था मनुष्य का चेहरा, और कहा कि ये फाड़ करके, वो एक दुनिया का नक्शा था, और कहा फाड़ करके दिया और कहा इसको जोड़ो। तो उसने जोड़ा और कैसे फटाफट जोड़ के आ गया। तो माँ ने कहा कैसे जोड़ा, तो उस फोटो के वो विश्व के नक्शे के पीछे मनुष्य का चेहरा था। अब वो तो जोड़ना बहुत सहज है, तो उसने वो मनुष्य के को जोड़ दिया तो नक्शा भी जुड़ गया। ऐसे कहानी बताते, माना कि बच्चे को कुछ काम दिया पर तो होशियार था। तो मन को भी बहुत काम चाहिए, और बाबा ने हमें बहुत काम दिया है मन के लिए। क्या सोचो, कैसे सोचो, सुबह से लेकर रात्रि तक के लिए अब दिनचर्या कैसे बनाओ, मन को कहाँ लगाओ, कैसे मेरे से सब संबंध जोड़ो, सब के लिए बाबा ने श्रीमत दी हुई है मुरलियों में। बस केवल करने की बात है, व्यर्थ को कैसे खत्म करो। आज उस दिन भी परसों भी अव्यक्त मुरली में था, सब ये खाते खत्म करो। कितने खाते थे हमारे पाप के खाते, वो सब खत्म करो, और कौन सा खाता जमा करना है जो बाबा हमें खजाना देते हैं, ज्ञान का खजाना। हाँ, याद है ना मुरली? दूसरा गुणों का खजाना, तीसरा शक्तियों का खजाना, फिर समय, श्वास और संकल्प। ये खजाने हैं संगम युग पर बाबा ने हमें दिए, इनकी बचत करनी है। पर बचत करने का मतलब ये नहीं कि छिपा के रखना है, इनको सफल करना है। तो हमारा हर संकल्प सफल हो, हर बोल सफल हो, हर कर्म सफल हो, वो तब सफल होगा जब वो बाबा की याद में होगा। इस क्योंकि हम कर्म योगी हैं, तो कर्म योगी का अर्थ बाबा क्या बताते हैं, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, बाबा की याद में कर्म करो और फल बाबा पर छोड़ दो। गीता में भी यही आता है, कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनम्। कर्म पर पूर्ण अधिकार रखो, मेरी इंद्रियां मेरे वश में हो, आत्मा के डायरेक्शन से ये इंद्रियां कार्य करे। लेकिन कर्म के बाद फिर उसके फल की चिंता नहीं, सफलता या असफलता उसकी चिंता नहीं करो। आप कर्म अच्छा करो बस, आप बोल अच्छे बोलो, आप शुभ भावना शुभ कामना रखो, फिर आगे उसकी तकदीर। बाबा सेवा के लिए भी कहते हैं, जैसे बिच्छू होता है डंक मारता रहता हर चीज को, अब वो कोई सख्त चीज देखेगा तो एक बार डंक मारा, देखा कि सख्त है छोड़ देगा, और नरम होगा तो, नरम चीज होगी तो और मारेगा। तो आपको सेवा सबकी करनी है, पर नहीं समझता नहीं मानता छोड़ दो। अंत में ये उलहना तो नहीं मिलेगा ना कि हमें पता ही नहीं चला, ये भले उलहना दे कि आपने बताया जरूर लेकिन हमने समझा नहीं, वो भले कहे वो उनकी बात, लेकिन हमारे प्रति तो उलहना नहीं होगा कि आपने बताया नहीं। इसलिए बाबा कहते सेवा भी करनी है, फिर एग्जाम्पल भी बनना है, योगी भी बनना है। और योगी बनना माना एक दो घंटे का योगी नहीं, लेकिन कौन से योगी, सदा के योगी, सदा के योगी। ऐसे नहीं एक दो घंटा बैठे बस हो गए योगी, लेकिन हर कर्म करते हुए भी हम निमित्त है। हाँ, बाबा करा रहे हैं, ये हाथ काम कर रहे हैं, मैं तो बाबा की याद में हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान भी हर वक्त बुद्धि में चले, बाबा की याद भी रहे, और गुण शक्तियाँ सब ये मेरा खजाना है, इनको समय पर भी यूज करना है। ये नहीं सोचना कि मेरे पास बहुत खजाना है, बहुत खजाना है, तिजोरी में बंद पड़ा है। हाँ, तिजोरी में बंद होगा तो क्या होगा, समय पर तो काम आएगा नहीं, वो तो बंद ही पड़ा है लॉकर में। लेकिन उसको यूज करना है, वो जो स्थूल खजाना होता है चलो उसको रख दिया तो चलेगा, लेकिन ये खजाना ऐसा है अगर यूज नहीं किया तो खत्म। जैसे समय का खजाना क्या कहते हैं ना, 24 घंटे हैं तो कितने सेकंड बताते हैं, तो ये ऐसे ऐसे सेकंड है जो अगर यूज नहीं किया तो खत्म, फिर नहीं आएंगे हाथ, क्योंकि तो पूरा हो गया। समय तो बीतता जा रहा है, हम समय को रोक तो नहीं सकते हैं, हम समय के लिए इंतजार भी नहीं करेंगे। इसीलिए हमें करना है, ये जब लक्ष्य बुद्धि में होता है तो हम सदा के योगी बन सकते हैं। लेकिन उस सदा के योगी बनने के लिए ये आवश्यक है कि बेहद का वैराग्य चाहिए। तो बाबा ने परसों की मुरली बहुत सुंदर चलाई कि ये बेहद का वैराग्य कैसे आएगा। सबसे पहले तो मैं कहने की आदत है। हाँ, मैं ऐसा, मेरी विशेषता, मेरा गुण, मेरा मैं और मेरा, सारा दिन उसी में लगे रहते हैं। तो जहाँ मैं और मेरा आ गया तो वास्तव में ये मैं और मेरा ये पाप के दरवाजे हैं, क्योंकि मैं कहा माना अभिमान से कहा, और मेरा कहा माना मोह के वश कहा या लोभ के वश कहा। तो जहाँ मैं और मेरा आया ये विकार बन जाते हैं। इसीलिए इसको परिवर्तन करने लिए बाबा क्या युक्ति बताते हैं, मैं कहो लेकिन क्या कहो, मैं आत्मा। तो क्या हर वक्त जब हम मैं कहते हैं तो आत्मा हो ये समझते हैं? क्योंकि आत्मा हो समझेंगे तब वैराग आएगा, क्योंकि मैं देह का रूप है तो ये मैं के साथ तो बहुत बड़ा तामझाम है। इस शरीर के साथ तो कितना तामझाम, क्या नहीं बखेरा है शरीर के साथ, सब कुछ चाहिए शरीर को, क्या नहीं चाहिए। तो जबकि सब कुछ चाहिए तो जरूर मन तो जाएगा ना, देह है तो देह के संबंध भी याद आएंगे, तो व्यक्ति भी याद आएंगे, वस्तुएं भी याद आएगी, अभी कपड़ा रोटी कपड़ा मकान ये सब चाहिए ना, तो याद तो आएगा, तो व्यक्ति भी याद आएंगे, वस्तु भी याद आएंगे, फिर वैभव भी चाहिए, हाँ धन संपत्ति ये भी चाहिए, नाम मान शान चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, चाहिए ही चाहिए सारा दिन आता रहेगा। तो ये सब जो बातें चाहिए चाहिए, तो व्यक्ति वस्तु वैभव, फिर कोई घटनाएं याद आ जाएगी, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, पुरानी बातें याद आती रहेगी, घटनाएं याद आएंगी, या तो कोई स्थान जहां हम गए थे वो भी याद आएगा, यहाँ गए थे वहां गए थे वहां गए थे, हाँ ये देखा वो देखा, या कोई परिस्थितियां याद आ जाएगी, तो मन तो बेलगाम घोड़ा होके भटकेगा। लेकिन जैसे ही कहा मैं आत्मा हूं तो क्या होता है, लगाम लग गया घोड़े को, क्योंकि आत्मा तो न कुछ लाई इस दुनिया का न कुछ ले जाएगी। तो सचमुच ये कितनी अच्छी युक्ति बाबा ने दी है, जब जब मैं शब्द आए तो उस समय याद करो मैं आत्मा, जब मेरा शब्द आए तो क्या करो मेरा बाबा। पर क्या सचमुच समय पर ये याद आता है या मेरा निकलता है? और जितना मेरा का मैं कहा वो पाप का हिसाब बनता जाएगा, क्योंकि विकार के वश है वो, पाप के दरवाजे हैं ये दो, मैं और मेरा, तो पाप का बोझा तो चढ़ा ही रहे हैं, फिर चुक तो कब करेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं ये मैं और मेरा इसको खत्म करो, भले कहो लेकिन मैं आत्मा जरूर याद करो, मेरा कहो लेकिन मेरा बाबा ये जरूर याद करो, और वो बाबा चाबी है, सर्व खजानों की चाबी है। जैसे ही बाबा कहा वो खजाने मिल जाएंगे, उस दिन बाबा ने कहा ये बाबा क्या है, ये बीज है, बीज को पकड़ा तो सारा वृक्ष आपके हाथ में आ जाएगा। इसीलिए बेहद का वैराग्य बहुत जरूरी है। चाहे कितनी भी प्यार से सेवा करो, लेकिन भक्ति मार्ग में भी कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। क्यों कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल? क्योंकि नेकी की और वर्णन किया तो मैंने ये किया, तो जितना मैं कहा मैंने किया, तो जो पुण्य जमा होगा ना उस नेकी का या जो भी किया, वो पुण्य का खाता कम हो जाएगा। क्योंकि अभिमान से कहा मैंने किया। और परंतु इसीलिए क्या कहते, कोई दान भी करो ना, इतना गुप्त दान करो जो किसी को वर्णन करने की जरूरत ही नहीं है। दायां हाथ दान करे तो बाएं को पता भी न चले, इतना गुप्त हो। और नेकी के लिए क्या कहते हैं, नेकी और पूछ। अच्छा काम करना है तो किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। अगर 10 लोगों से पूछेंगे ये अच्छा काम करो, 5 लोग कहेंगे करो, 5 कहेंगे क्यों तुम पढ़े हो, छोड़ो तुम्हारा क्या जाता है, हा? अब आप किसका मानेंगे। इसीलिए नेकी और पूछना नहीं होता है। गलत काम करने का संकल्प आए तो 10 बार सोचो, भले पूछो हाँ करो, पर अच्छा काम करना है, नेकी का काम, कल्याण का काम, सबकी सेवा का काम, तो उसमें पूछने की दरकार ही नहीं है। लग जाओ, लगे रहो, हाँ ऐसे कहते हैं, लगे रहो। तो जहाँ गलत काम है वो न पूछने की दरकार नहीं है, परंतु अगर भूल से हो भी गया वो गलत काम तो सच बता दो, ये गलती हो गई, फिर वहां छिपाओ नहीं। तो गलती हो गई तो वर्णन करके बता करके आपकी आधी सजा माफ हो जाएगी, और अच्छा काम किया तो वर्णन करने की जरूरत ही नहीं है। हम तो दादियों को देखते थे, हाँ सारा दिन कितनी सेवा, लेकिन फिर जब पूछते थे दादी आपने उनकी सेवा की, उन्होंने क्या क्या, दादी तो भूल जाती थी। हम तो मिसाल देते बड़ा, दादी जानकी जी का, दादी जानकी जी यूनाइटेड नेशंस में इंग्लिश में भाषण किया, उनको तैयार करके दिया था इंग्लिश में बोलने का, तो दादी ने इंग्लिश में क्या खड़केदार इंग्लिश बोला और 3 मिनट का भाषण किया, और सब इतने खुश हुए, उठे तालियां बजाई यूनाइटेड नेशंस में, इतनी बूढ़ी औरत और कैसे इतना आध्यात्मिक बातें जो कही, उनको लिख के तो दिया था पर तैयारी भी अच्छी की होगी। परंतु उसके बाद मधुबन में आई तो हमने बाई चांद दादी जानकी से पूछ लिया, दादी वो यूनाइटेड नेशंस का थोड़ा अनुभव तो सुना ना। दादी कहती वो तो भूल भी गई मैं तो भूल भी गई, वो तो जयंती से पूछो वो बताएगी, मैं तो नहीं, मुझे ये सब समाचार सुनाना नहीं आता है, बस बाबा का ज्ञान सुनाना आता है, मैंने ये किया, समाचार सुनाएंगे क्या? ये भी अपनी बढ़ाई हो गई ना, मैंने ये किया। तो इसीलिए जरूरत ही नहीं, वो जयंती बहन करी वो साथ में थी, उनसे पूछो। तो कहने का भाव है कि दादी जानकी कितनी बेहद का पूरा वैराग्य था। जब बाबा ने दादी से पूछा, अव्यक्त मुरली चल रही थी, तो बाबा ने मुरली में ही कहा कि डेट फिक्स करो विनाश की डेट, तैयार होने की, संपूर्ण बनने की डेट। तो निर्वैर भाई से पूछा, निर्वैर भाई से कि आप डेट बताओ, तो निर्वैर भाई ने कहा बाबा इस सीजन के अंत में हम सब संपूर्ण हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा क्या आपने सबका ठेका उठाया है? सबका ठेका आपने उठाया है? तो अभी क्या कहेंगे, सबका तो ठेका हम उठा भी नहीं सकते ना कि सब संपूर्ण हो जाएंगे, ऐसे हम कह सकते हैं क्या? लेकिन कहा उसने। फिर दादी जानकी से पूछा आप बताओ। अब दादी जानकी वही कैसे बताएगी, तो दादी जानकी ने इतना कहा बाबा मैं तो तैयार हूँ बाबा आपको जो करना है आप भले हमें ले जाए, मैं तैयार हूँ। तो बाबा ने फिर उसको दूसरा कहा, बाबा ने कहा आप तैयार हो परंतु दूसरों का क्या होगा, आप तैयार हो कि जाना है क्या, आपको तो सबको तैयार करना है। तो मैं तैयार हूँ इसीलिए मैं छुट्टी मेरी मैं छूट गई जाए, ये तो नहीं ना। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि वो सन्यासी तो समझते बस मोक्ष मिल जाए, और हम क्या कहते हैं, सबका कल्याण करना है, इस विश्व को स्वर्ग बनाना है, तो मुझे मोक्ष मिल जाए मुझे फिर संसार में नहीं आना है, ये तो स्वार्थ हो गया। पर विश्व का कल्याण करना है, विश्व को स्वर्ग बनाना है, सबको पावन बनाना है, तो ये तो कल्याणकारी सोच है ना। तो इसीलिए बाबा ने दादी को कहा कि सबको ले जाना है, सबको, आप अकेली नहीं हो। तो कैसे, दादी सबको यही कहती थी जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। पर देखो दादी कैसे सचमुच संपन्न संपूर्ण बन गई, न्यारी प्यारी होती कि नहीं तो क्या दादी ने विश्व में सेवा की होगी, 130 देशों में ऐसे ही थोड़ी सेवा केंद्र खुले। दादी कितनी ट्रैवल करती थी, और जहाँ जाती थी कैसे सब बाबा के बच्चे बना देती थी। मम्मा बाबा की भी यही विशेषताएं थी, दादियों की भी थी, तो हम भी उनको फॉलो तो करते ही हैं, लेकिन कहने का भाव है कि उनके अंदर एक सेवा की लगन थी और बेहद का वैराग्य था। तो वो बेहद का वैराग्य कैसे आता है जब मेरा कुछ नहीं है। तो दादी जानकी क्या कहती थी, ये खीसा खाली और क्या कहती थी जी, सफेद वस्त्र और खीसा खाली, मेरे पास कुछ भी नहीं है, हाँ फिर भी पद्मा पदम विश्व की मैं वाली, ऐसे कहती थी, इतना नशा। और ओम शांति कहती थी 3 बार, तो मैं कौन मेरा कौन, इतना नशे से कहती थी। इतनी शक्ति उस समय दादी को आ जाती थी, शरीर में तो ताकत थी नहीं, कितनी बीमारियों से दादी गुजरी होगी। तो हम तो बहुत प्रेरणा लेते थे दादियों से, दादी जी दादी प्रकाशमणि जी ने कितना एडमिनिस्ट्रेशन संभाला, सारा यज्ञ बाबा के होते हुए तो कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था। परसों आपने मुरली सुनी ना, जो अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली थी, इतने भाई बहने आ गए, जो हिस्ट्री हॉल मेडिटेशन हॉल ओम शांति भवन सब भर गया, और बाहर के होटलों में रखना पड़ा, धर्मशालाओं में रखना पड़ा। हाँ ये देखो किसका मोबाइल बज रहा है, मोबाइल नहीं बजना चाहिए, तो इसीलिए इतना रखना पड़ा। तो उसी समय की बात है कि जब इतने सारे भाई बहन आ गए तो बाबा की मुरली तो पूरी हो गई, और ये बात बताई थी जब एक मुरली पड़ी होगी ना परसों संडे की। तो अंत में जब बाबा विदाई ले रहे थे, सबको बाबा ने दृष्टि दी, माइक सब हट गया, सब पूरा हो गया। तो उसके बाद अब बाबा दृष्टि दे रहे थे, अब दृष्टि देते देते अचानक बाबा ने दादी को बुलाया नजदीक, क्योंकि आवाज तो माइक के बिना तो कहाँ किसको सुनाई देगा, केवल जो जो बाबा के साथ है नजदीक वही सुनेगा। तो बाबा ने दादी को कुछ कान में कहा लास्ट में जाने से पहले, तो विदाई लेने से पहले तो कुछ कान में कहा, और कैसे पूरा हुआ, और दादी जी बैठ गए और बाप दादा ने विदाई ली, बाबा चले गए। लेकिन क्या कहा वो तो किसी को पता नहीं, केवल दादी जी ने ही सुना। लेकिन बाबा ने दादी को क्या कहा कि यहाँ आसपास कोई जमीन ढूंढो, ये 91 की बात है जो अव्यक्त मुरलियां हम सुन रहे हैं 91 की। और उसमें बाबा ने कहा दादी को कि कोई आसपास जमीन ढूंढो, क्योंकि बहुत बच्चे आएंगे इसलिए आपको और रहने के स्थान चाहिए, या माउंट आबू में मकान चाहिएंगे, इसलिए यहाँ तो जगह नहीं थी, तो कहीं माउंट आबू में जगह ढूंढो। अब दादी को बाबा ने कह दी और बाबा ने विदाई ली। तो फिर बाद में दादी ने निर्वैर भाई को ये बात कही कि बाबा ने ऐसे मुझे कहा है। अब निर्वैर भाई ने कहा बाबा दादी कहाँ माउंट आबू में जमीन मिलेगी, इतना सहज तो नहीं है। तो लेकिन कैसे बाबा ने ये युक्ति तो पहले से रच ली थी, तो हमारी जो दूध वाले हैं वो दूध लेकर के आते हैं, तो उनके पास ये ज्ञान सरोवर की जो जमीन है ना वो उनकी थी और उनको बेचनी थी ज्ञान सरोवर की सारी, इतनी कितनी 25 एकड़ है वहाँ, बहुत कुछ बहुत है बड़ा, तो वो इतनी बड़ी जमीन तो ये उनको बेचनी थी। तो उन्होंने वल्लभ दादा को कहा, वो हमारे दूध डिपार्टमेंट के हेड थे वल्लभ दादा शरी छोड़ा, तो उनको उन्होंने कहा कि ऐसे हमारे पास जमीन है, अगर आपको खरीदनी है आप खरीद सकते हैं। अब उसने आके निर्वैर भाई को बताया, निर्वैर भाई ने दारी जी को बताया, दारी जी यहाँ जमीन है माउंट आबू में, अगर खरीदनी है तो वो कह रहे हैं कि आप खरीद सकते हैं। तो दादी ने तुरंत निर्वैर भाई को भेजा, जाओ देखो, देख कर आओ, और देख कर आए और जमीन पसंद आ गई। अब सोचो बाबा ने दादी को कान में कहा और वहां वो दूध वालों को प्रेरणा मिल गई और उन्होंने कहा ये जमीन है आप लेना चाहो तो ले लो। तो कैसे हो गया और उसके बाद कैसे ज्ञान सरोवर बना वो तो फिर लंबी कहानी है, लेकिन कहने का भाव क्या है कि कैसे बाबा ने अपना कार्य कराया और दादी जी कितनी अपने पांव पर 20 घंटा, जैसे दादी सदा सेवा में थी, लेकिन अंतिम दिनों में हमने दादी जी को देखा, इतनी उपराम इतनी उपराम इतनी उपराम होती गई जो बात मत पूछो। कई बार हम लोग जैसे दादी को सोचते थे, दादी को ये बताएंगे ये बताएंगे वो बताएंगे, कई बातें होती है, पर तो जैसे दादी के नजदीक जाते थे सब बातें भूल जाती थी, सब भूल जाती थी। बाबा के आगे भी ऐसा ही था, साकार में बाबा के आगे बिल्कुल जैसे वो बात ही भूल गई, और सोचते थे बस हम चुप रहे, बाबा से दृष्टि लेते रहे, दादी से दृष्टि लेते रहे, या दादी कुछ बोले हम न बोले, हम क्यों आवाज करें, और सब भूल गए। तो बाबा मामा से भी अनुभव किया तो दादियों से भी ये अनुभव किया, लेकिन ये किस आधार पर था, क्योंकि उन्होंने इतने अशरीरी बनते गए, इतना बेहद का वैराग्य आ गया, और कैसे धीरे 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 सब ने जिम्मेदारी उठा ली, बाबा की भी जैसे सब जिम्मेदारी उठा ली और बाबा का कार्य आगे बढ़ा, दादी जी भी अव्यक्त हुए, कैसे सब ने जिम्मेदारी उठा ली, और अव्यक्त बाप दादा तो बार बार संकेत देते ही रहे कि बच्चे ये पाठ भी कब तक। तो अभी हम देख रहे हैं कैसे रिवाइज कोर्स चल रहा है, चाहे साकार मुरलियां चाहे अव्यक्त मुरलियां, तो ये रिवाइज कोर्स क्या सिद्ध कर रहा है कि परीक्षा कितनी नजदीक है। जब परीक्षा नजदीक होती है तो कोई नया सिलेबस थोड़ी पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं ना, नया सिलेबस तो साल भर होता है, लेकिन एग्जाम्स के नजदीक जब हम आते हैं तो वो जो पढ़ा हुआ है उसी को ही रिवाइज करते हैं ना, और जो आवश्यक बातें एग्जामिनेशन में आएगी, परीक्षा में क्वेश्चंस आएंगे, उसी को ही पढ़ाते हैं या कुछ रिवाइज कराते हैं, बस रिवीजन ही होता है, सिलेबस तो पूरा हुआ। तो बाबा ने जो इतना हमें ज्ञान दिया वो तो साकार मुरलियों में है, साकार मुरलियों में सारा ज्ञान बाबा ने दिया है, किसका ज्ञान नहीं दिया है सोचो। आध्यात्मिक ज्ञान जिसको कहा जाता है वो सारा साकार मुरलियों में हमें मिलता है। और फिर अव्यक्त मुरलियां क्या है, बाबा ने जब पहली अव्यक्त मुरली चलाई तो बाबा ने उसमें यही कहा, हीरे तो निकले हैं लेकिन हीरों को पॉलिश करने लिए अव्यक्त मुरलियां हैं, क्या करना है, हाँ हीरे तो है लेकिन अभी तक वो जैसे उन पर वो लग जाता है ना, डस्ट लगती है या मैल चढ़ती, तो थोड़ा उसको साफ करना होता है, तराशना होता है, तब उसमें चमक आती है। तो हीरों को अभी अव्यक्त मूल्यों से हीरों को चमकाना है। तो बाबा ने इस प्रकार से जो कुछ कहा वो भी देखा, वो भी काम पूरा हुआ। 108 तो तैयार हो गए होंगे ना कि नहीं हुए होंगे अभी तक 8 तो पूरे ही तैयार हो गए हैं, 108 भी तैयार हो गए, 16,108 भी तैयार हो गए। बाबा ने एक मुरली में कहा था अभी 9,00,000 तैयार नहीं हुए, मैं उसकी समझ से 9,00,000 भी तैयार हो गए हैं, हो गए या नहीं हुए, हो गए या नहीं हुए, आप किस पे हो हमेशा शुभ ही बोलना चाहिए। बाबा विदेशियों से भी पूछते थे, ये थोड़ी है कि आप उसमें नहीं होंगे, विदेशी भी तो होंगे ना, खाली भारत वाले थोड़ी होंगे। विदेश में कितने बाबा के बहुत ही लाडले बच्चे हैं, कितने बाबा की सेवा कर रहे हैं। बाबा बाबा की सिवाय तो और कुछ है ही नहीं उनकी बुद्धि में, ऐसे भी है बच्चे। लेकिन बाबा का स्थापना का कार्य तो जैसे लगभग इनडायरेक्टली पूरा हो ही गया है, बस अभी पॉलिश कर रही है और चमकते जा रहे हैं। जो बाबा कहते हैं ना, अभी तक जो लोग आते थे आपके पास ज्ञान सुनते थे तो क्या कहते थे, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, आप जो सुनाते हो बहुत अच्छा सुनाते हो। लेकिन वो संस्थाओं में हम जाते हैं वहां भी बहुत अच्छा सुनाते हैं, हाँ वो भी अच्छा सुनाते, आप भी अच्छा सुनाते हो, सब अच्छा सुनाते हैं। तो पहले तो कहते थे आप भी अच्छा सुनाते हो, लेकिन वो समय आएगा जब वो क्या कहेंगे, आप ही, आप भी नहीं लेकिन आप ही, क्योंकि उनको यहां से रोशनी दिखाई देगी। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं सेंटरों को भी, चाहे गीता पाठशालाएं, चाहे अपना जो परिवार में रहते हैं, उनको इतना पावरफुल बनाओ, क्योंकि अंत में आत्माएं बहुत दुखी होगी। जो बाबा कहते दुख के पहाड़ गिरेंगे, अभी हो रहा है, ये सब हो चुका है शुरू, और सब कुछ अचानक होना है, अचानक। इसलिए बाबा कहते जब अचानक होना है तो हर वक्त तैयार होना है, जैसे एग्जामिनेशन में सरप्राइज टेस्ट होते हैं ना, तो हर वक्त बच्चे को तैयार होना होता है कि कभी भी एग्जामिनेशन हो जाए। तो यहां भी सरप्राइज अचानक होगा, पहले नहीं बताएंगे बाबा, परंतु उस अचानक का सामना करने लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसलिए बाबा तीन शब्द हमेशा कहते, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास। और ये हमने दादियों को देखा, तो उससे धीरे धीरे कैसे संपन्नता की ओर गए। अब हमको भी ऐसे ही करना है, हमको भी ऐसे ही बनना है, परंतु कैसे बनेंगे जब अंदर में बिल्कुल बेहद का वैराग्य आएगा। शुरू में बेहद का वैराग्य कैसे आया हमारी दादियों में, इतनी यंग थी, कितने धनवान घरों की थी, कोई छोटे मोटे घरों की थोड़ी थी, बहुत धनवान परिवार थे। लेकिन एक धक से सब स्वाहा किया, क्योंकि उनको साक्षात्कार हुए, जैसे बाबा को विनाश का साक्षात्कार हुआ, और एक धक से जैसे सब स्वाहा किया, बिजनेस वाइंड अप कर ले, अपने पार्टनर को कह दिया ये हीरे मुझे तो पत्थर दिखाई दे रहे हैं, भगवान ने मुझे कुछ और कार्य दिया है। तो एकदम उनको बेहद का वैराग्य आ गया, पर किस आधार पर आया, उसने विनाश का साक्षात्कार किया। पर अब तो बाबा कहते साक्षात्कार हो तभी वैराग आए, ऐसी बात नहीं है, अभी तो दिखाई देता है, आंखों के सामने है, कोई साक्षात्कार करे तभी हमें निश्चय हो, ऐसी बात जरूरत नहीं है, अचानक कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग वो चित्र दिखाते ना कि कैसे आज सृष्टि, कैसे वो विकारों के पंजे में है, नीचे विकारों की आग जल रही है, वो राक्षस उसको पकड़ रहा है, धरती को, नीचे विकारों की आग है और सारी धरती विकारों की आग पर जल रही है, और ऊपर से बमों की वर्षा, तो बमों की आग और विकारों की आग और बीच में धरती, ये हाल है आज धरती का। और धरती का क्या हाल है, ऑक्सीजन पर है, सिलेंडर लगा हुआ है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन खत्म तो खत्म, ओम शांति। तो दुनिया को थमाते रहते हैं, थमा रहे हैं, रोज धमकियां देते रहते, हम तुम्हारे ऊपर गिराएंगे, हम ये करेंगे, एटम बॉम्ब गिराएंगे, वो करेंगे, क्या नहीं धमकियां देते रहते हैं, बात मत पूछो। लेकिन और बाबा ने कल भी कहा, परसों कब, कल था, नर चाहत कुछ और की और भई, मनुष्य के मन में एक और भगवान के मन में दूसरा। मनुष्य के मन में है तो ये 5 साल की योजनाएं बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, कितनी योजनाएं बना रहे हैं। और भगवान के मन में क्या है, ये सब खत्म। वो ससुर से हम सब मिलकर एक हो जाएंगे, और बाबा कहते मिलके तो एक होना ही नहीं है, होना ही नहीं है मिलकर एक। मिलके एक अगर हो जाएंगे तभी सत्युग आ जाए, लेकिन होना ही नहीं है। अमेरिका रशिया उस समय जब साकार बाबा की मूल्यां जो चली है उसमें भी हम बाबा बताते थे कि अमेरिका रशिया दोनों में होड़ थी, कोल्ड वॉर था, वो बॉम्ब बना रहे वही बॉम्ब बना रहे, वो कि आप कम आप बंद करो कि आप बंद करो, दोनों ही बना रहे हैं। तो इतना टेंशन था उस समय कि कभी भी बॉम्ब गिरा दे। लेकिन बाबा ने कहा अभी नहीं होगा, अभी बच्चे तैयार कहाँ हुए हैं, बच्चे तैयार हो जाए फिर तो देर थोड़ी है, बम्बोर को आग लगने में देर थोड़ी लगती है, जैसे सूखी घास होती है ना, अब उसमें बस एक चिंगारी चाहिए, क्या होता है तो क्या होगा, उसे सारी जगह सब आग फैल जाएगी। तो बेहद का वैराग्य कैसे आएगा, ऐसे नहीं कि सब कुछ ये बस माया 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 समझेंगे तब वैराग आएगा। भक्ति मार्ग में जो सन्यासी है वो माया समझ करके छोड़ देते हैं। बाबा ने माया समझकर छोड़ने की बात नहीं कही है, वो कहेंगे स्त्री माया है, धन माया है, बाल बच्चे सब माया है, हाँ छोड़ो इन सब को छोड़ो, सन्यासी बन जाते हैं, माया कह करके सन्यासी बन जाते हैं। मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसमें वो सन्यासी कैसे बने, कैसे उनको वैराग आवे, और खास करके स्त्री के प्रति, जो स्त्री के प्रति आकर्षण होता है, और जैसे कहते हैं भाई स्त्री तो आग है और पुरुष तो कपास है, हाँ आग के आगे अगर कपास जाएगा तो क्या होगा, विनाश हो जाएगा, हाँ वो जल जाएगा, तो इसीलिए स्त्री का त्याग कर देते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि स्त्री तो शक्ति है, स्त्री का त्याग नहीं करना है, लेकिन काम वासना का त्याग करना है, धन का त्याग नहीं करना है लेकिन लोभ का त्याग करना है, बाल बच्चों का त्याग नहीं करना है, वो तो जिम्मेदारी है, वो तो निभानी है, आपके आपके हिसाब किताब है, आपका हिसाब किताब कौन चुकता करेगा, आपको ही करना है, आपने जन्म दिया है तो पालना कौन करेगा, कोई और करेगा क्या, आपको ही करनी है, तो हिसाब किताब आपने ही बनाया, आपको ही चुकता करना है, इसलिए छोड़ना नहीं है परंतु जरूर मोह जरूर त्यागना है। तो कुछ भी छोड़ो नहीं, ब्रह्मा बाबा ने थोड़ी कुछ छोड़ा, पत्नी युगल भी साथ में थी, यशोदा साथ में थी, लेकिन कैसे उनको आत्मा की दृष्टि से देखते थे, आत्मा की दृष्टि से। तो आत्मा का पाठ शुरू से ही बाबा ने कैसे पक्का कराया सब में, तो बेहद का वैराग्य भी दिला दिया। यशोदा बाबा की लौकिक में युगल थी तो यशोदा को बाबा हमेशा कहते थे तुम आत्मा हो, आत्मा दीवारों पर लिख देते थे, आत्मा है यशोदा, आत्मा है, ताकि यशोदा भी पढ़े और वो जो बाबा के साथ लौकिक रिश्ता है वो भूल जाए, इतना बाबा का वैराग्य था देह और देह के बातों से। और भगवान ने तो यही किया, सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, गीता पढ़ते हैं लोग लेकिन कहाँ किसका आचरण भी है, सब देह और देह के सब संबंधों को भूलो, मुझे याद करो, ये भगवान अपने बच्चों को कहते हैं, क्योंकि सत धर्म की स्थापना अब भगवान कर रहे हैं, तो सत धर्म की स्थापना करने लिए वैराग्य जरूर चाहिए। तो छोड़ना कुछ नहीं है लेकिन जो है उसको सफल करना है, तभी तो बाबा ने कहा ना सफल करो और सफलता को पाओ। वो तन को भी माया समझते हैं और बाबा कहते नहीं, तन से सेवा करो, ये शरीर में आत्मा है तब तक बाबा की याद में रहेगी, अपने विकर्मों को भस्म करेगी, तो ये शरीर रूपी चोले को या कोट को भले सिलाई करके वो ही पहनना है, दूसरा लेंगे तो कहाँ पुरुषार्थ कर सकेंगे, इसीलिए इसी में रहो ताकि अंत तक भी आप वो देख सको, विनाश को भी देखना है। जल्दी चले हाँ, कई बार बाबा पूछते जल्दी घर चलना है या संगम युग और चले सब, क्या चाहते हैं, जल्दी चलना है या और भी चले संगम युग। जो समझते बस जल्दी जाएं, बस पूरा हो गया वो हाथ उठाओ, नहीं दो हाथ से उठाते फिर नीचे कर देते और जो कहते कि नहीं संगम युग और थोड़ा चलना चाहिए हम संपूर्ण बन जाएं, वो हाथ उठाओ। अच्छा सारे एक ही तरफ चलो, तो बाबा कहते कब बनना है संपूर्ण, कोई डेट दोगे कि नहीं, क्योंकि अभी वो तो तैयार है। बाबा कहते एडवांस पार्टी भी पूछ रही है बाबा से, बाबा हम कब अपना पाठ शुरू करें, कब देवताएं आएंगे सृष्टि पर। प्रकृति भी पूछ रही है हम अपना काम कब शुरू करें, क्योंकि प्रकृति को तो पूरी सफाई करनी है ना इस दुनिया की, तभी तो देवताएं आएंगे इस सृष्टि मंच पर। पर हम पहले तैयार होंगे तब तो देवता बन के आएंगे। तो इसीलिए ये सब बाबा ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होनी है। परंतु विनाश ज्वाला प्रज्वलित तब हो जब यज्ञ के ब्राह्मण तैयार हो। और यज्ञ के ब्राह्मण कैसे तैयार होंगे, जब लक्ष्य इतना पक्का हो। तो तन को भी सफल करना है, तन को हम कष्ट नहीं देते, भक्ति मार्ग में तो कितना कष्ट देते हैं, देखा होगा ना, अनुभव होगा जब भक्ति में वो यात्राओं पर जाते हैं, हमने तो देखा कैसे वो साष्टांग नमस्कार करके फिर वो फिर आगे फिर एकदम जैसे लेटते लेट लेट करके जाते हैं। सोचो चल के जाना तो भी ठीक, लेकिन लेट लेट करके फिर एक बार फिर वहां से दूसरा, कई तो कलाबाजी करते हुए कितना कष्ट देते हैं शरीर को। और बाबा कहते बच्चों को तो कोई कष्ट देता ही नहीं, बहुत तुमने कष्ट उठाया, दो युग तक बहुत कष्ट उठाया, अब तो बाबा कहते सहज है, बस आत्मा समझकर मुझे याद करो, कितना सहज। तो तन को सफल करना है, सेवा में लगाना है। बाबा कहते अगर बीमार भी हो ना तो भी चलो, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, और हमको कहा जाए भाई इनको समझाना है, और मैं को नहीं, मेरे तो सिर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है। अब गुलजार दादी कहती थी सिर में दर्द है उसका थर्मामीटर है क्या, जब पता चले सिर में दर्द है, पेट में दर्द है इसका कोई मीटर थर्मामीटर तो नहीं है जो पता कर सके पेट में दर्द है। तो इसीलिए बहाना बहाने तो बहुत दे सकते हैं, परंतु अगर है भी तो भी मान लो है भी, पर फिर अगर सेवा करेंगे तो जो दुआएं पाएंगे वो दुआओं से वो दर्द चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। बहुत अनुभव है इसका, इतना सिर दर्द है लेकिन मुझे कहा गया कि नहीं इनको थोड़ा ज्ञान देना है, समझाना है, अनुभव होगा ना, और समझाना शुरू किया दर्द गायब है ना। बहनों को अनुभव, किसको अनुभव है, सबको, हाँ सबको है, क्योंकि वो दुआ मिली, दुआ जो मिली वो दुआ से वो दवा का काम कर लेती है दुआ। अभी नीचे मेडिकल विंग की कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो उस मेडिकल विंग की कॉन्फ्रेंस में मुझे एक टॉपिक मिली थी, रोल ऑफ ब्लेसिंग्स इन हेल्थ केयर, मेडिकल प्रोफेशन में ब्लेसिंग्स दुआओं का क्या रोल है। तो मैं बहुत मेरा संकल्प चला विचार सागर मंथन कि डॉक्टरों को भी दुआ चाहिए, डॉक्टर्स भी दुआ देवे। तो बाबा कहते हैं ना 20% दवा बाकी 80% दुआ। और दादी जी तो हमेशा ऐसे ही कहती थी, दादी जी से हम प्रश्न पूछते थे, दादी जी आप क्या पुरुषार्थ करते हो, दादी से कई बार पूछते थे, दादी कहती है बस मैं तो सबकी दुआओं से ही चल रही हूँ, चल नहीं रही हूँ, मैं सबकी दुआओं से उड़ रही हूँ, ऐसे दादी कहती थी, आपकी दुआएं ही हमको उड़ा रही है। क्योंकि दादी के अंदर वो इतनी भावना इतनी ऊंची थी, अपने मुझे को चाहिए दादी को कभी संकल्प भी नहीं आता था, और जो दादी के पास जाते थे कैसे दादी उनको आगे बढ़ाने के लिए कितना कितना सेवा करती थी, तो बहुत प्रेरणाएं ली हमने दादी से। तो बहुत खुशी है आप सब से मिल करके राजकोट पहुंचा है, और मैं तो कहूंगी मेरा पहला सेवा स्टेशन राजकोट ही था, जैसे बताए ना 1969 में बाबा अव्यक्त हुए, और उसी समय बाबा ने अव्यक्त बाप दादा की जो पहली मुरली चली उसमें बाबा ने कहा कि अभी यहाँ मधुबन में बठिया रखो, ट्रेनिंग रखो कुमारियों की, अदर कुमारों की, मतलब ट्रेनिंग रखो और बठिया रखो। तो उसमें जो पहली कुमारियों की ट्रेनिंग थी उसमें हम आए थे 1969 में बाबा के अव्यक्त होने के बाद, वो एक महीने की ट्रेनिंग थी। और उसी ट्रेनिंग में हमारी सब दादियों ने हमारे क्लासेस कराए, सब उनका ही रोल था, क्योंकि जब यज्ञ शुरू हुआ माना भारत में जब आए कराची से 50 में, तो उस समय बाबा ने सब दादियों को अलग अलग सेवा केंद्रों पर भेजा, लेकिन जब बाबा अव्यक्त हुए तो सब दादियों को बाबा ने मधुबन में बुला लिया, और मधुबन में हमारी जो बड़ी बड़ी दादियां थी वो हमारी टीचर बनी, दादी जानकी, दादी चंद्रमणि, दादी प्रकाशमणि, दीदी मनमोहिनी, वो तो थे ही कुंज दादी, कितनी दादियां थी। तो उस समय हम लोगों ने वो ट्रेनिंग की, और उसी समय हमारी भारती बहन जी भी मधुबन आए थे, क्योंकि साकार बाबा ने भारती बहन को कहा था आप राजकोट में सेंटर खोलो, वहाँ राजकोट में है ना वो कौन सा कॉलेज है, राजकुमार कॉलेज, तो वहाँ पर तो पहले राजाओं के बच्चे पढ़ते थे, तो बाबा ने कहा कि वहाँ से बहुत सेवा होगी वहाँ खोलो। तो भारती बहन ने शुरू तो किया था, लेकिन उनको हैंड की जरूरत थी, तो दादी को कहा कि दादी इतनी सारी कुमारियां एक हैंड हमको चाहिए। तो फिर दादी जी ने मुझे भारती बहन के साथ राजकोट भेजा, तो सबसे पहला सेवा का स्थान हमारा राजकोट था, और उसमें भी हम मुझे याद है उस समय के जो भाई बहने थे, एक तो मूलजी भाई थे ना मूलजी भाई थे जी, हाँ आइसक्रीम वाले वो मूलजी भाई, आप पुराने जानते होंगे, बाकी तो शायद नहीं भी जानते होंगे, लेकिन बहुत उसने उस समय सेवा की, नया नया सेवा केंद्र खुला था, तो हम भारती बहन के साथ रह करके कैसे वहाँ सेवाएं शुरू की। लेकिन हम तो कॉलेज से पढ़ के आए थे ना, एग्जाम दे के आए थे, मई का महीना था और यहाँ कुमारियों की ट्रेनिंग हुई, तो मुझे वापस मुंबई जाना था, क्योंकि मुंबई की हूँ, बीएससी कंप्लीट किया था और फिर सीधा मधुबन आए थे ट्रेनिंग के लिए। तो फिर मैं जुलाई अगस्त सितंबर शायद 3 महीना रही होंगी राजकोट में, फिर तो अक्टूबर में मुझे वापस मुंबई आना पड़ा, और मुंबई में आकर के सब अपना हिसाब किताब जो भी था कॉलेज का और जो भी लौकिक भी वो सब पूरा किया, और सीधा सेंटर पर आ गए, और सेंटर पर रही कुलाबा में, बॉम्बे का जो कुलाबा सेंटर है, लेकिन दादी प्रकाशमणि कुलाबा में आए हुए थे, मधुबन में रहना शुरू किया नहीं, तो दादी जी तो मुंबई में रहते थे, खास ग्राम देवी सेंटर है वो हमारी टीचर थी दादी प्रकाशमणि, तो फिर तो हम बेहद में सेवा में चले गए। तो आप सब भी यहाँ आए हो तो पहला पाठ योग तपस्या में पक्के बनना है, तो क्या चाहिए क्या बताए, बेहद का वैराग्य चाहिए, देश है देह के सब संबंधों को भूलो, सदा के योगी बनना है, तो ये निरंतर योगी की स्थिति यहाँ से अनुभव करके जाएं, तो जहाँ भी जाएंगे वो योग आपको बहुत मदद करेगा। कदम कदम पर बातें आएगी, परीक्षाएं आएगी, लेकिन ये सारी जो गुण शक्तियां बाबा कहते आपका खजाना है, उनको यूज करो तो सफलता पाएंगे। सफल करो और सफलता को पाओ, यही बाबा हम बच्चों को दुआएं देते हैं, वरदान देते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बहुत सुंदर मार्गदर्शन के लिए पुनः पुनः दीदी का धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।